پاک شدہ آدمی کی طرف سے اگر قربانی کی جائے گی تو میت تو اس کی مالک نہیں نہ ہوتی، وہ تو آپ نے کس وجہ سے کرنی ہے؟ مثلا میت کا انتقال ہوا اور اس نے کہا کہ میرے مال میں سے قربانی کی جائے، اور اس کا 1/3 جو ہے، 1/3 حصہ قرض وغیرہ کی ادائیگی کے بعد اس سے قربانی کی جا سکتی ہے تو کر دینی چاہیے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وفات شدہ آدمی کی ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، والد والدہ بھائی بیوی بہن شوہر وغیرہ وغیرہ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایصال ثواب کی غرض سے، صحابہ کرام امہات المومنین رضی اللہ عنہم کی ایصال ثواب کی غرض سے، تو ان ساری صورتوں میں جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ مالک تو نہیں بن جاتے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ گوشت لوگوں میں تقسیم کر دے، بس اس کا جو ثواب ہے وہ ان تک پہنچ جائے گا اگر اللہ نے قربانی کو قبول فرما لیا. کیونکہ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ اس شرط کے ساتھ معلق ہیں کہ اگر اللہ قبول کر لے، اللہ نہ قبول کرے تو کچھ بھی. جتنے بھی گناہ ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ اس گناہ سے اللہ ناراض ہوا پھر عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ناراضی نہیں ہوا. مثلا ایک آدمی کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے، مرنے لگا تھا، چوری کر لی تو لوگوں نے کہا تو گناہگار ہے، چور ہو گیا، لیکن اللہ جانتا ہے تو مر جاتا، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوا تو یہ گناہ بھی نہیں ہوا. تو جو نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور جس گناہ پہ خدا ناراض ہو اس کے بعد اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو قربانی جتنے لوگوں کی طرف سے کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے. اور اللہ سے اچھی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اللہ نے قبول کر لیا ہوگا انشاءاللہ، تو اس کا ثواب انہیں پہنچے گا. وہ مالک نہیں ہوتے، اس گوشت کو خود بھی کھایا جا سکتا ہے، دوسروں کو بھی، جیسے اور قربانی کے مصارف. تین سوالات ہیں، دو سمجھ میں آتے ہیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے، آگے سب پڑھا ہی نہیں جا رہا. ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم قربانی کرتے تھے ایک ہی جانور سارے گھر والوں کی طرف سے. بالکل درست ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، لیکن کیا یہ حدیث عمل کے قابل ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. یہ پچھلی مرتبہ بھی آپ سے عرض کیا تھا، پھر عرض کرتے ہیں کہ حدیث کو پڑھ کے اس سے حکم کو ثابت کرنا یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. اگر ہم اس طرح کریں گے تو یقیناً گمراہی کی طرف چل پڑیں گے، یقیناً. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، ایک جانور ذبح فرمایا اور کہا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے، چھٹی. اب ایک شخص اس حدیث کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی تھی، میں ان کا امتی ہوں. یہ مسئلہ اس نے حدیث سے ہی تو ثابت کیا، اور کہاں سے لے آیا؟ سوچا جائے نا کہ حدیث ہی ثابت ہوا، اور کہاں سے لایا؟ اس لیے احادیث ایک دوسرے کو کینسل کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم जो हुक्म अपनी हयात तैयबा हिजरत के दूसरे साल कहते थे ना, ये जरूरी नहीं है कि सातवें साल भी उन्होंने यही कहा हो, और जो सातवें साल का है वफात से पहले भी उस हुक्म पे कायम रहे हो, ये जरूरी नहीं है। ये हदीस में ही आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरें भिगोई जाती थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरों का वो शरबत हम मलते थे और गुठलियां फेंक देते थे, उसको छान लेते थे और पेश करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे। और हदीस में ही आता है कि एक दफा उस पर झाग आ गई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से उसे उठाकर दीवार पे दे मारा। अब एक आदमी कहता है कि खजूरें अगर इसी तरह कर ली जाए और झाग ना आए तो क्या पीना जायज हो जाएगा? सवाल तो ये है, कोई शराब बन जाती है, नशा उसमें आ जाता है, कच्ची शराब ऐसी ही बनती है ना, पक्की शराब ही हो गई उसे उबाल ले, उससे भी ज्यादा पक्की ये हो गई कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें सिखा दिया मशीनों में ले जाएं। तो हदीस को देख के उससे हुक्म निकाल लेना भाई, ये आम आवाम को क्या, मौलवी का भी काम नहीं, अच्छे अच्छे मुफ्ती इसमें नहीं चल सकते। ये जो एक जानवर होता था ना, आपने हदीस भी पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर के मुतल्लिक कहा कि तीन हिस्से करो, एक अपने घर में रखो, एक रिश्तेदारों को दो, एक आम लोगों में बांट दो। इससे जिसमें कोई भी अमल नहीं करता, आप करते होंगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस हदीस को मंसूख फरमाया। आपने कहा वो जो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तीन हिस्से करना, अब तुम्हें आजादी है, चाहो तो सारा गोश्त आपने फरमाया खैरात कर दो, चाहो तो सारा रख लो। ये उस साल का किस्सा है हदीस में जिस साल मुसलमान कुर्बानी करने वाले बहुत थोड़े थे, तो आपने फरमाया तीन हिस्से करो, वो साल गुजर गया, दो चार साल बाद मुसलमानों के पास माल आ गया, हर आदमी कुर्बानी कर सके, फरमाया कुर्बानी करो। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उस साल की बात है जब सारे खानदान में एक ही आदमी कुर्बानी करना, एक ही कर लो, सबकी तरफ से काफी हो गया। जब मुसलमानों के पास ज्यादा पैसे आ गए तो फिर हर एक के लिए कुर्बानी का निसाब अलग मुकर्रर हुआ। मुज्तहिदीन ने इन अहादीस को देख कर फिर इससे हुक्म निकाला। ईद की नमाज पढ़नी है ना, ईद की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकबीरें कही थी, इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईद की तकबीरात में कुछ साबित ही नहीं। इमाम अहमद कहते हैं मुझे कोई हदीस ऐसी नहीं मिली जिससे पता चले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज में कितनी तकबीरात कहते थे। हम छह जायद तकबीरात कहते हैं ना, इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह का मुझ तक कोई हदीस पहुंची नहीं, छुट्टी। हमारे पास क्या है, शाफी हजरात के पास क्या है? हमारे पास यह है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह में बैठे हुए थे, और अबू हुज़ैफा भी थे, अबू मूसा अशअरी भी थे। तो किसी ने आगे पूछा कि हजरत कल ईद है तो नमाज भी कितनी तकबीरात कही जाएंगी, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ने कहा कि तकबीर तहरीमा और रकू समेत तुम पांच तकबीरें कहना पहली रकत में, यानी तीन जायद हो गई और दो तकबीरात ही हो गई, और फरमाया दूसरी रकत में तीन तकबीरें जायद कहना और एक रुकू की कहना, नौ हो गई कुल रुकूआत, तकबीर तहरीमा तीन और छह तकबीरात जायद, टोटल कुल मिला के नौ हो गई। इतने में वलीद इब्न उकबा आ गया और वो कूफा के गवर्नर थे, अगले दिन नमाज उन्होंने पढ़ानी थी, उन्होंने कहा हजरत आप क्या फरमाते हैं ईद कैसे पढ़ी जाए? तो पूछा अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह से किसी ने, तो उन्होंने कहा इब्न मसूद के होते हुए हमसे पूछते हो, इब्न मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब थे और इस्लाम हमसे पहले कबूल किया, यानी इन्होंने ज्यादा ईदें पढ़ी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। तो इब्न मसूद रजी अल्लाह ने उससे कहा कि देखो सुबह कुर्बानी की ईद के मुतल्लिक फरमाया कि लोगों को नमाज पढ़ाइएगा आप अमीर, पहली रकत में 5 तकबीरें, 1 तहरीमा, 3 जायद और 1 रुकू, और दूसरी रकत में 3 तकबीरात जायद और 1 रुकू की 4 9 तकबीरों समेत पढ़ाइएगा, और इनके दरमियान ऐसे ऐसे तिलावत करनी है, और उसके बाद खुतबा पढ़ना है। ये बता दी उन्होंने तरकीब। इब्न मसूद और सैयदन अली रजी अल्लाह अन्हु ऐसे ही नमाज पढ़ाते थे, 9 तकबीरात। जब हारून अल रशीद का दौर आया तो हारून अल रशीद ने ईद की नमाज पढ़नी थी, वहां यूसुफ रहमतुल्लाह ने पढ़ानी थी, चीफ जस्टिस थे, हारून को खुद पढ़ानी थी, लेकिन उसने हजरत से कहा कि हजरत ईद की नमाज आप पढ़ाएंगे। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह जब नमाज पढ़ाने के लिए चले तो उससे कहा हजरत मेरे दादा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की जो रिवायत है उसके मुताबिक नमाज पढ़ाइएगा। उन्होंने कहा वैसे पढ़ा देंगे। ये गौर से सुनना बात, उन्होंने कहा वैसे पढ़ा देंगे, तो उन्होंने 1 तकबीरे तहरीमा कही, फिर 5 तकबीरात कही 3 की बजाय, और फिर 1 रकू के लिए कही, तो 5 और 2 7 हो गई। फिर अगली रकत में उन्होंने 1 तकबीर कही रकू के लिए, 8 हो गई, और 4 या 5 तकबीरात उन्होंने कही। जो करीब के हैं वो कहते हैं इतनी, जो दूर के हैं वो कहते हैं इतनी, 4 या 5 कही। अगर 5 भी कही हो तो ये 8 और 5 मिलाकर 13 तकबीरात हो गई ना, 12 या 13 तकबीरात कही इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने 13 तकबीरात जो ईद की नमाज में कही, हमारे हनफी फुकहा कहते हैं कि ईद की नमाज में 16 तकबीरात भी कहे तो जायज है। 16 तकबीरात का मतलब हुआ कि 3 तकबीरें तो जरूरी हो गई ना जी, 1 तकबीर तहरीमा, 1 पहली रकत का रुकू उसकी तकबीर 2 वो सुन्नत मौकद है, दूसरी रकत की रुकू की तकबीर ये वाजिब है, 3 तो बाकी 13 तकबीरें कैसे पूरी करेगा, 8 पहली में कहे 5 दूसरी में कह ले, तकबीरात जवाइद हो गई, 13 जायद तकबीरात हनफिया ने मानी है। अगरचे इसकी असल हमें नहीं मिली कि 16 तकबीरात कैसे लिखी गई है, लेकिन बहरहाल हनफिया ने इस कॉल को लिखा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी तकबीरें कहते थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पहली रकत में भी ज्यादा कहते थे, दूसरी रकत में भी ज्यादा कहते थे। जब हारून रशीद ने कहा कि हजरत हमारे खानदान की जो रिवायत है उसके मुताबिक नमाज पढ़ाए, तो वहां यूसुफ रहमतुल्लाह उसके मुताबिक नमाज पढ़ा दी। इससे हनफी फुकहा ने इस्तदलाल किया है, ये बड़ी अहम बात है, वो कहते हैं जब खलीफतुल मुस्लिमीन शरीयत का पैरोकार हो और वो कोई ऐसा हुक्म दे मुमलिकत में जो शरीयत के खिलाफ नहीं है तो मीरुल मोमिनीन की इताअत वाजिब है, उसके खिलाफ काम करना गुनाह कबीरा है। हुकूमत खुद शरीयत के मुताबिक हो और वजीर आजम कहते कि खबरदार जो किसी ने हुकूमत की जमीन पे नाजायज कब्जा किया, तो हुकूमत की जमीन पे पहले कब्जा अगर जायज भी था ना, फर्ज कर लो किसी के लिए, तो अब हराम हो जाएगा। मोमिनीन और काजी वक्त बहुत बड़ी चीज है इस्लाम की नजर में। हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हारून रशीद के कहने के मुताबिक नमाज पढ़ाई, इसलिए कि वो जानते थे कि हारून शरीयत का पाबंद है, उसकी माननी जरूरी, वरना स्टेट का निजाम कायम नहीं रह सकेगा, कानून नाफिज नहीं रह सकेगा। सैयदना उमर रजी अल्लाह ने जो बात अपनी तरफ से भी कहते थे, लोग इसलिए मानते थे कि जानते थे मीरुल मोमिनीन खुद शरीयत के पाबंद हैं और उनका हुक्म मानना जरूरी है ताकि जिंदगी निजाम मुआशरे का डिसिप्लिन कायम रहे। हारून रशीद का दौर गुजर गया, खिलाफत खत्म हो गई। हनफी फुकहा ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हुमा जैसे नमाज पढ़ाते थे वैसे ही नमाज पढ़ाओ, 3 तकबीरें पहली रकत में, जायद 3 दूसरी में, 6 और 2 रुकू 8 और 1 तकबीर तहरीमा 9 तकबीरों से हम हनफी नमाज पढ़ते हैं। इसी पे इब्न मसूद और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हुमा पढ़ाया करते थे। अब यहां पर पहुंच के हदीस कहां गई, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह उनका अमल आ गया ना, इसलिए हर जगह ना हदीस से इस्तदलाल किया जा सकता है ना हर जगह हदीस हम लोगों की रहनुमाई करती है। सिर्फ हदीसों को पढ़ के हुक्म साबित करना ये बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। आदमी चल नहीं सकता अमली जिंदगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आया है हदीस में, कई चीजें ऐसी अगर आप अमल करेंगे तबाही फिर जाएगी। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु आए एक नहीं कई एक लोगों ने इसी रिवायत को गलत इस्तेमाल किया, खुदा हिदायत दे उन्हें। कई एक बीवी को तलाक में क्यों तलाक, कहने लगे जी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु आए थे उन्होंने कहा अब्दुल्ला मेरे बेटे को कहे बीवी को तलाक दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला तलाक दे क्योंकि तेरा बाप बैठा। हमने कहा फिर कहने लगी जी बस मेरे वालिद ने कहा मैं तलाक दूंगा, क्योंकि तुम्हारे वालिद सैयदना उमर रजी अल्लाह क्या सैयदना उमर रजी अल्लाह जैसा दिमाग तुम्हारे बाप का जिस दिन हुआ उस दिन हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं होगी, खैर से खुद ही तलाक दे दो है बेवकूफों जैसी हालत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रजी अल्लाह जैसे फहीम और दाना और अल्लाह का बख्शा हुआ बंदा था उससे कहा अल्लाह के रसूल अगर ये लड़की हमारे खानदान में रहेगी ना ये सारे भाई आपस में लड़ पड़ेंगे। वो जानते थे ना कि उसका मिजाज क्या है बहू का, उनका हजरत से कहे तलाक दे दे, वो मसला ही कोई और था। यहाँ इस हदीस को लेके बैठे हुए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर तू अब्दुल्ला तू और तेरा माल तेरे बाप का है लिहाजा तलाक दे दी हम भी तलाक दे देंगे, कर लो इस हदीस पे अमल ताकि घर उजड़े। खबरदार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छे अच्छे फुकहा जहां हदीस आती है ना चुप हो जाते हैं क्योंकि हर हदीस से हुक्म का निकालना साबित करना या आदमी के बस की बात नहीं। कुर्बानी के लिए फिर तहरीर फरमाया कि बेहतर क्या अपना बकरा दुम्बा लेके अलहदा किया जाए। हाँ अज़दा वकर उमर रजी अल्लाह नवा की जो आपने मिसाल दी है ना कि वकर उमर रजी अल्लाह नवा शायद यही आपने पूछा है कि एक एक जानवर अपना जबा करते होंगे या नहीं करते होंगे, साबित भी हो तो भी इसते बिलाल रजी अल्लाह नो क्या करते थे। देखो भाई इज्तिहाद मुज्तहिद की ज़हनी सलाहियत भी होती है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अमल से ये समझे कि कुर्बानी असल में लोगों को एक दूसरे को खिलाना है गोश्त, तो उन्होंने ऐन ईद के दिन बाजार से गोश्त खरीदा मंगाया और कहा कुर्बानी हो गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह ने कहा एक जानी तो ज़बह करनी है ना, मुर्गा मंगाया ज़बह किया और कुर्बानी हो। इसीलिए अहले हदीस हज़रात के उलमा में एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनके इल्म में शुबा नहीं, बड़े नेक परहेजगार थे। वो कहते थे इसते बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मुर्गे की कुर्बानी किया है, मुर्गे की कुर्बानी कर दो हो जाएगी खत्म हुआ किस्सा, एक जान ही ज़बह करनी है ना। अब मसला आया सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, उन्होंने कहा कुरान ने 8 जानवर गोश्त के लिए मुकर्रर किए हैं, समानियत अजवाज 8 किस्म के जानवर हैं, ऊंट बकरा दुम्बा और गाय, 4 मुजक्कर 4 इन्हीं के मोनस 8 और गाय और गाय के साथ साथ भैंस भी 9 कर लो या 8 कर लो, गाय भैंस एक ही हुक्म में आ जाती। उन्होंने कहा ये 8 हैं नर और मादा, इनके अलावा किसी की कुर्बानी नहीं हो सकती। हम हनफी उसी के पाबंद हो गए, शाफई मालकी हम्बली सब सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की इस बात के पाबंद हो गए, इसलिए हम करते हैं। अब एक आदमी उठता है और कहता है सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, दूसरा कहता है वकर उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसे किया तो क्या करते फिर, और क्या किया जा सकता है। कुर्बानी के लिए ज्यादा बेहतर क्या है अपना बकरा या दुम्बा लेकर अलहदा किया जाए या गाय जानवर में हिस्सा डाल दिया जाए। भाई अपनी अपनी नीयत है, अल्लाह ने वुसअत दी है, गुंजाइश है। कोई आदमी समझता है कि अगर कोई और मिल गया तो मुमकिन है मेरी कुर्बानी खराब हो जाए, उसकी मर्जी है, बिस्मिल्लाह ना करे अपना जानवर ले ले। अल्लाह ने ज्यादा वुसअत दी है अपना दुम्बा बकरा ले ले, अल्लाह ताला ने वुसअत इतनी नहीं दी और गाय के इससे इतने ही पैसे बचते हैं उसको कर ले जैसे जी चाहे। जिन चीजों में अल्लाह ने आजादी दी है ना उसको आजाद रखिए, हम कोई नहीं है कि हुक्म और पाबंदी लगाएं। अल्लाह की आजादी को सल्ब करना और अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उनकी इजाजत देना, जो मुफ्ती भी ऐसे करेगा जहन्नम में जाएगा। फतवा देना कोई आसान चीज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काजी और मुफ्ती में फर्क क्या होता है? इतना सा फर्क है कि काजी कुव्वते नाफिजा हुकूमत की मदद से जबरन नाफिज करता है कानून। वो फैसला करता है अदालत में कि कत्ल है, तुम्हारी सजा कत्ल है, और पुलिस को देता है और कहता है इसे कत्ल कराओ, फांसी चढ़ाओ। पुलिस वाले 4 घंटे में फांसी चढ़ा देते हैं, बस खत्म हो जाता है किस्सा। यही होता था खिलाफत राशिदा में भी, उसके बाद भी। सैयदना अली रजी अल्लाह तो इतने सख्त थे इंसाफ के मामले में कि पूछते थे कैसे कत्ल किया था, पता चलता था हजरत ऐसे जबा किया है, ऐसे सूली पे चढ़ाया है दरख्त में। सैयदना अली रजी अल्लाह ने कातिल को वारिसों के हवाले कर देते थे और कहते थे ले जाओ और ऐसे ही कत्ल करो जैसे तुम्हारा बंदा कत्ल किया गया। छुट्टी, लोग जब देखते थे चंद घंटे बाद हमारा भाई भी ऐसे ही लटका हुआ है जैसे इससे किसी को लटकाया था, वो भी इसी तरह लाश को तड़पा रहा है जिस तरह तड़प रहे थे, तो इंतकाम उसकी आग भी बुझती है और देखने वालों को इबरत भी होती है कि यार हमने किया ना तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तो फरमाई वो कहते ले जाओ बस, कातिल के कातिल को हवाले कर देते। फरमाते सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ने बास वक्त ऐसे किया कि कातिल को हवाले कर दिया, फरमाया जंगल में ले जाओ, जिस तरह तुम्हारे आदमी को मारा है इसे भी मार दो। काजी और मुफ्ती में फर्क क्या है? काजी हुकूमत के जोर से नाफिज कर देता है, मुफ्ती नाफिज नहीं कर सकता, फतवा दे सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 काजियों में से 2 जहन्नम में जाएंगे, 33% रह गया। यही हाल मुफ्तियों का भी है। मुफ्ती अगर अल्लाह की दी हुई आजादी सल्ब करे लोगों से या अल्लाह की मना करदा चीज को लोगों के लिए जायज करार दे, मारा जाएगा। यार क्यों इम्तिहान में डालते हो किसी को? किसी शख्स ने 9 ज़िलहज के रोजे की नियत की है और सफर दरपेश आ गया तो ना रखे, क्या जरूरत? नफल है ना, आजकल गर्मी है तो नफल रोजा ना रखे, गर्मी की वजह से क्यों अपने आप को तंगी में डालता है? और सफर कर रहा है, आसानी है, बैरियर है, एयर कंडीशन है, रखना चाहता है, मर्जी उसकी रख ले। दोनों सूरतें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि सफर में लोग जो आदमी रोजा रखता है उससे कोई नेकी का काम नहीं किया, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में रोजा भी रखा। और जब असर की नमाज का वक्त आया तो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंच चुके थे, शदीद गर्मी थी, तो आपने पगड़ी उतारी, एक तरफ रखी और कहा मेरे सर पे पानी डालो, और बैठ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी की वजह से, और मुसलसल लोग पानी आपके सर मुबारक पे डालते रहे। और आपने देखा काफिला जो रुका हुआ है, कोई लकड़ियां जमा कर रहा है, कोई खाना पकाने का, कोई कुछ कर रहा है। आपने बताया जिन्होंने रोजा नहीं ना रखा आज ही हमसे ज्यादा सवाब ले गए। दोनों सूरतें, आजादी है, आपकी हिम्मत है रख लीजिए, नहीं हिम्मत ना रखिए। कोई कजा नहीं है, इसलिए कि सिर्फ नियत ही की थी ना। नफल रोजा वो भी रख के तोड़ दे तो कजा है हमारे हनफियों के नजदीक। एक कारोबार में 4 लोग शरीक है, उनमें सरमाया एक खास तनासिब से तय है। इनमें 2 शराकतदारों ने अपने ही कारोबार को कुछ रकम उधार के तौर पे दे रखी है, यानी असल सरमाए से हट के अब वो इस रकम पर इंटरेस्ट भी वसूल करते हैं, तो क्या ये इंटरेस्ट वसूल करना चाहिए? सवाल से ये समझ में आया कि कारोबार में 4 आदमी शरीक है, फर्ज कीजिए 4 लाख हो गए, इनमें सरमाया एक खास तनासिब से तय है, फर्ज कर लीजिए 1.5-1.5 लाख 2 का है, 50-50 हजार 2 का है। इनमें से दो शराकत दारों ने अपने कारोबार को कुछ रकम उधार के तौर पे दे रखी है। मसलन 50,000 धोखा हो गया था, डेढ़ डेढ़ धोखा हो गया था, तो ये डेढ़ और डेढ़ 3 और 4 लाख हो गया। फिर अब वो 2 लाख और दे देते हैं और कहते हैं ये 2 लाख हम उधार दे रहे हैं, और वसूल करते हैं वो 50,000 या 1.5 लाख पे था वो एक नफा, और एक नफा इसका वसूल करते हैं जो उधार दिया है। अगर ये सूरत है तो ये उधार पे जो वसूल कर रहे हैं ये जायज नहीं है, ये सूद है। तो अपने कारोबार का नफा वसूल करे, वो 1.5 लाख के 50,000 खर्च कर रहे हैं, जो कुछ उसने रकम इन्वेस्टमेंट की दी है उसका नफा वसूल करेगा, कारोबार को जो उसने उधार दिया है इस उधार को इस चीज का नफा ले रहा है वो, इसके इवज में इसके अगेंस्ट अल्लाह के आखिर का सवाब है अगर वो मुसलमान है और मानता है। अगर मुसलमान ही नहीं है तो फिर वो कारोबार और तरह करेगा सूद का। ज़कात का हिसाब किस माल पे होगा? जो स्टॉक में पड़ा हुआ है ना उस पे होगा, क्योंकि उस पे ज़कात ज्यादा बनेगी ना, तो इसलिए वो फुकरा का अनफा लिल फुकरा। ज़कात में वसूल ये है कि उस चीज पे ज़कात आएगी जहां ज्यादा ज़कात वसूल हो और गरीबों को फायदा पहुंचे। आप कहना क्या चाहते हैं मियां? साफ लिखिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बोस था। अच्छा जी, इससे मुतल्लिक आपने एक इस्तफसार किया तो फरमाया कि इमाम बुखारी की मालूमात इससे मुतल्लिक ना थी, दूसरे लफ्जों में उन तक की इत्तिलाआत दुरुस्त नहीं पहुंची थी। अच्छा साहब, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत पर राय कायम फरमा ली तो क्या ये खुद उनकी सनद को कमजोर नहीं कर देता या उनकी तहकीक पे शक नहीं कर देता? भैया बात ये है कि आपने इस एक सवाल में कई बातें कर ली। मुहद्दिसीन पर हुआ था बड़ा जुल्म, आप तारीख पूरी उठा कर देखें, और मोतजिला की हुकूमत आ गई थी और हुकूमत आ गई थी मामूनुर रशीद की। ये दुनिया में जो तब्दीलियां आई है ना, ये तब्दीलियां हुकूमतें इतनी नहीं ला सकी। हिटलर और नेपोलियन और स्टालिन इतनी तब्दीली नहीं लाया दुनिया में जितनी तब्दीली कार्ल मार्क्स लाया। लेनिन ने जो इंकलाब बर्पा किया वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी जितनी वो मार्क्स ने इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में अब तक उसकी कुर्सी पड़ी हुई है, ये जो उसने दास कैपिटल जो किताब लिखी थी उस किताब ने जितनी बड़ी तब्दीली लाई लेनिन नहीं ला सका। हारून और मामून किस खाते में है? जितनी बड़ी तब्दीली मामूनी पर रहमतुल्लाह अलैह लेके आए हिंदुस्तान में, पूरे तुगलक और मुगल और खिलजी कौन पूछता है, जितनी बड़ी तब्दीली हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा अजमेरी और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी तब्दीली तुगलक नहीं ला सके, मुगल नहीं ला सके। कौमें मुआशरे ये जो दरवेश कुटिया में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं ना, और ये जो बड़े बड़े मुफक्किरीन किताबें लिखते हैं, जितनी बड़ी तब्दीलियां ये लाते हैं हुकूमतें नहीं ला सकते, कोई नहीं सकता। जितनी बड़ी तब्दीली हमारे मुल्क में उन लोगों ने लाई जो कानून बनाने वाले हैं, शरई कवानीन बनाने वाले हैं, शरीयत कोर्ट के जो बेंच के जो जजेस थे ना, ये तो वक्त बताएगा कि इतनी बड़ी तब्दीली ना भुट्टो साहब ला सके, ना बेनजीर, ना जियाउल हक और ना नवाज शरीफ, कोई नहीं ला सका। जितनी बड़ी तब्दीली उन लोगों ने लिख दी है, जब भी मुल्क में कानून नाफिज होगा इस्लामी नजाती काउंसिल जितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है, वजीर आजम और सदर किस खाते शुमार में, ये नहीं हुआ करता। तब्दीली मुआशरे में, समाज में, وہ مفکرین پیدا کرتے ہیں جو اپنی فکر کو اپنی تقریر یا تحریر کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں، لوگوں میں تبدیلیاں ایسے آیا کرتی ہیں۔ حکمران جب آئے ہیں عباسی اور ان سے پہلے اموی، کچھ یہ سارے حکمرانوں میں عباسیوں میں تو خاص طور پہ عقل کا غلبہ آ گیا تھا بہت زیادہ، اور انہوں نے محدثین کو مارنا شروع کیا، سزائیں دینی شروع کی۔ مامون الرشید نے سارے ملک میں سرکلر جاری کیا کہ میرے پاس آؤ، علماء کے نام کی فہرستیں بنی، سارے علماء کو بلایا گیا، اس نے کہا بحث کرو اس عقیدے پہ کہ امت کو کیا ماننا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے نمبر کے آدمی ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے نمبر کے آدمی ہیں، شیعہ علماء نے ثابت کیا کہ سب سے اول درجہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ مامون الرشید نے ملک میں حکم جاری کر دیا کہ اگر کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مانے گا اسے درے لگیں گے، مارا جائے گا، جیل ڈال دیا جائے گا۔ یا مامون الرشید، اللہ اس کی مغفرت اور اس کے درجے بلند کرے، بڑا آدمی تھا، اس نے غلطی کی، سیاست کو غالب کر کے مذہب کو مٹانا چاہا، مذہب اب تک قائم ہے، اس کی ہڈیاں بھی رہی ہوں گی کہ نہیں رہی ہوں گی، اب تک دنیا کی اکثریت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑا مانتی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چوتھے درجے میں مانتی، یہ ہوا کرتا ہے۔ سیاست سے پیدا شدہ تبدیلیاں نقش پر آب ہوتی ہیں، پانی پہ اٹھنے والا بلبلا ہے، اور مفکرین جو تبدیلی لاتے ہیں وہ جڑ کھود دیتے ہیں۔ محدثین میں جب ظلم ہوا تو ان محدثین نے ان فقہا سے نفرت کا اظہار کیا جن کی تعریف حکومت کرتی تھی۔ ایک نیچرل چیز ہے، آپ کا جو دشمن ہے نا، اس کا جو دوست ہے، وہ چاہے کتنا ہی اچھا ہو، آپ کے دل میں تبن ایک قدورت آ جاتی ہے کہ میرے دشمن کا دوست بھی میرا دشمن ہے، اور جو آپ کے دوست کا دشمن ہے چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کے دل میں تبن آتی ہے کہ یار میرے دوستوں کا دشمن ہے۔ محدثین کی لڑائی حکومت سے تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد حکومت میں تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد سارے اچھا ہونے کے باوجود حکومت کی لڑائی کی زد میں آ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چڑ تھی ان لوگوں سے جو حکومت کے نمائندے تھے، اب امام ابو یوسف تھے، امام محمد تھے، ادھر ان کے اصل استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ ان کو ان لوگوں سے کیوں بہت تھا؟ اس لیے کہ حکومت یہ لوگ چلا رہے تھے انصاف کے ساتھ، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ابو حنیفہ ایسا آدمی ہے جو جنگل کے سور کو جائز سمجھتا ہے، یہ سارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، اسے سمجھنا پڑتا ہے تب جا کر اس کی سمجھ آتی ہے، لکھ دیا۔ اگلی نسل جو آئی انہوں نے کہا کبھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ جائز سمجھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ سے غلطی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کی ساری بخاری کو ہی اٹھا کر رد کر دیں کہ بخاری نے جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو انہیں ان لوگوں سے بود ہو گیا تھا نا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے چند جملے ایسے لکھے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے، اب اگر آپ کے میرے بھیا اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم بخاری پہ اعتماد اٹھا لیں تو یوں نہیں ہوتا، طریقہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ صحیح بخاری میں لکھ دیا ہے نا، آپ یقین مانیں آنے والی امت نے اس کا ریزہ ریزہ کر دیا ہے، تارو کو بکھیر کے رکھ دیا ہے، ایک ایک ریشہ الگ کر لیا ہے۔ امام بخاری نے یہ بات صحیح کی، امام نے یہ بات غلط کی، امام نے یہ صحیح کی، امام نے یہ غلط کی۔ ایک جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کی پہلی جلد کے آخر پہ ایک روایت لکھ دی ہے، حدیث نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اسے فلاں نے بیان کیا، اسے فلاں نے بیان کیا، اسے فلاں نے بیان کیا کہ ایک بندر نے زنا کیا اور سارے بندروں نے مل کے اسے پتھر مارے. عمر ابن میمون کی روایت ہے کہ عمر ابن میمون غالباً وہی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے مدینہ منورہ میں، کہتے تھے ڈیڑھ سال بالغ ہونے کے بعد میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا رہا اور میری ہمت نہیں ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پہلی صف میں کھڑا ہوں. میں دیکھتا تھا عمر کو تو مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا، اتنا روب تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا. کہتے ہیں میں دوسری صف پہ نماز، غالباً یہ وہی ہے، یہ عمر ابن میمون کی روایت ہے. امام بخاری رحمت اللہ لکھ گئے. اب ان کے بعد آنے والوں نے کیا کیا، محدثین نے یہاں تک لکھ دیا کہ امام بخاری کا بھولا پن اس سے ظاہر ہوتا ہے، جو روایت ملی صحیح سند سے انہوں نے لکھ دی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. کون مان سکتا ہے اس روایت کو، کوئی بھی نہیں مانتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ ان کی بات کرتے ہیں، ہم امام مسلم کی بات کرتے ہیں، یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ جو لوگ حدیث مانتے ہیں یہ بے وقوف لوگ بھی بیٹھے ہوئے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں تین روایتیں ایسی لائے ہیں جو کبھی بھی نہیں مانی جا سکتی. مثلاً امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ لائے ہیں کہ ابو سفیان نے درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری بیٹی رملہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے آپ نکاح کر لیں. ہم کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. خود ہمیں مسلم پڑھانے والے ہمارے استاد ایسے سیدھے تھے کہ کہنے لگے کہ یہ حدیث تو صحیح ہے. ہم نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت، وہ ان کا مسلم پڑھانے کا پہلا سال تھا، پڑھ کے آئے نہیں تھے، انہوں نے لگے یہ حدیث صحیح ہے. ہم نے ویسے ہی عرض کیا، ہم کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ملے کس دن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو؟ کہنے لگے روز ہی ملتے تھے مکہ میں. میں نے کہا حضرت ان کی صاحبزادی کا نکاح ہوا ہوا تھا، حبشہ تشریف لے گئی تھی، حبشہ میں ان کے شوہر جو صحابی تھے انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، انتقال کر گئے، رملہ بیوہ ہو گئی. اب باپ ان کا ابو سفیان مکہ میں، شوہر ان کا جس کو آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، لڑکی رملہ بیٹھی ہوئی ہے حبشہ میں بیوہ. ابو سفیان نے کب پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بیٹی سے نکاح کر لیں؟ تم سوچتے رہے. کہنے لگے پھر اصل قصہ کیا؟ ہم نے کہا اصل قصہ یہ ہے کہ جب رملہ بیوہ ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے پیغام بھجوایا شاہ نجاشی کو، اور نجاشی سے کہا کہ ابو سفیان کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں. اور اس پہ رملہ رضی اللہ عنہ بہت 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 اللہ نے عقل کی، یہ بڑی عقل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھی. ایک یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوئے. ایک اور بھی عرض کرتا ہوں، رملہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ نے بلا کے کہا، نجاشی نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے نکاح. انہوں نے کہا میرا وکیل کون ہے؟ میرے والد تو مکہ میں ہیں. جعفر رضی اللہ عنہ وکیل بنے ان کے، اور نکاح ہو گیا. جب یہ خبر پہنچی ابو سفیان کو تو ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کے لیے ایسا مناسب رشتہ ہے، اس رشتے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ہم سب ایک درجے کے ہیں، فیملی وائز یعنی سب قریشی. یہی ابو سفیان جب ان لوگوں نے کیا بنو خزاعہ پہ حملہ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد، تو خزاعہ پہ حملہ کر تو دیا جذبات میں آ کے بنو بکر کی حمایت میں، لیکن یہ جانتے تھے کہ اس کے سیاسی نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاعہ پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور بنو خزاعہ اٹھے، اس نے شعر پڑھے، اس نے کہا شریف لوگ جب کسی کو اپنا الائی بنا لیتے، الائیز بنے ہیں نا امریکہ کے بھی اسی طرح، उसने कहा जब किसी को हलीफ बना लेते हैं तो नहीं छोड़ते। आपने पूछा क्या हुआ है खुजा? उन्होंने कहा कुरैश ने हमला किया, इतनी बकरियां मार दी, इतने आदमी मार दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुजा तुम्हारी मदद की जाएगी। वुजू कर रहे थे और चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं मैं समझ गई कि वही आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कुछ नहीं बोले और आप हौस पे आ गए। अबू सुफयान को पता था कि ये मुआहिदा जो नालायकों ने तोड़ दिया है इसके सियासी नतायज कितने खराब हो सकते हैं। भागे मदीना मुनवरा, और मदीना आके रात कहां रहते? आए थे तजदीद मुआहिदा के लिए जो हुदैबिया में हुआ था। तो अबू सुफयान गए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कि यार वो मुआहिदा तोड़ दिया हमने, इतने कत्ल कर दिए, मुआहिदे की तजदीद करो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई मैं तो कर नहीं सकता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करें तो करें, तुम उमर के पास ना जाना, बाकी जिधर भी चले जाओ तुम्हारी खैर खाई है, उमर ने तुम्हें देख लिया और अगर बात बढ़ी तो तुम्हारी गर्दन भी उतार सकता है। अब उस सुफयान डर गए, वो गए किसके पास? सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चले गए और कहा अली, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मजाक भी कैसा किया उनसे, कहा अबू सुफयान मैं तो जा नहीं सकता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनका नवासा है, हसन खेल रहा है, इसको ले जाओ, बच्चे को ले जाओ मेरे। अबू सुफयान समझदार आदमी थे, समझ गए जिसे कहते हैं किडिंग, मेरे साथ ये हो रहा है। गए रमला के पास, उम्मुल मोमिनीन और अपनी बेटी रमला रज़ी अल्लाह अन्हा ने बिस्तर उलट दिया। ये तो तहजीब बदल गई भैया, ये अब तक क्यों आफ्ताब साहब, ये अब तक था कि कोई किसी के घर जाता था तो तनूर की रोटी नहीं रखते थे, कहते थे लो तनूर की रोटी हमें खिला दी, यानी औरतें इतने, हम इतने नालायक गए गुजरे हैं, घर की रोटी नहीं पका के दी, तनूर की रोटी खिला दी। ये तहजीब है ना, अब तक ये तहजीब थी, अब तो नहीं रही, अब तो दौर आ गया किसका, सैंडविच का और वो पता नहीं क्या के, बैर छोड़ो हैं, पिज्जा का, ये सही का पिज्जा आ गया ना, अब तो कहा। उस जमाने में अबू सुफयान गए बेटी के घर और बेटी ने बिस्तर पलट दिया और खर्री चारपाई बांध की, कहा अब्बा बैठिए। उन्होंने कहा मेरी बेटी जी क्या किया है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि बिस्तर पर बैठूं, ये बिस्तर इस काबिल नहीं है, ये खराब बिस्तर है, मैं बाप को नहीं बिठाती। उन्होंने कहा अब्बा बात साफ है, ये बिस्तर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो यहां लेटते हैं, और अब्बा आप नापाक हैं, मुशरिक हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे मुशरिक को नहीं बिठाती। रमला की मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये रमला को किससे सिखाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गए थे कि मेरा बिस्तर है और ना किसी को बिठाना, ये मोहब्बतें खुद सिखा देती। अबू सुफयान गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जब पहुंचे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। अबू सुफयान खड़े हुए और कहा वो मुआहिदा जो टूट गया है मैं उसकी तजदीद करता हूं। आपने ना हां की ना ना की, अबू सुफयान वापिस हो गए और पीछे से लश्कर आ गया। तो अबू सुफयान ने दरखास्त ही किस दिन की थी कि मेरी बेटी रमला से निकाह कर ले? हमने कहा हजरत ये मुस्लिम की रिवायत ठीक नहीं, दो चार दिन में तहकीक करके आए तो अल्लाह अल्लाह उन्हें वली के रहमत फरमाए, माथा हमारा चूमा और कहा बेटे सच कहते हो, ये बातें होती, इसलिए ये नहीं है कि बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो कुछ लिख के अगली आने वाली उम्मत ने चुप करके आंखें बंद करके उसे तस्लीम कर लिया। यार दोनों तबके हैं, एक वो तबका है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मिनो अन तस्लीम करता है, जो लिख दिया बस खत्म, एक वो तबका है जो हदीस को मानते ही नहीं, एक दरमियान में हम हैं जो अकल पे परखते हैं, हदीस के असूल पे परखते हैं, रुवात को परखते हैं, बाकी मुआशरा देखते हैं, ये हो सकता था कि नहीं हो सकता, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु ये कह सकते थे कि नहीं कह सकते। बुखारी की कितनी रिवायात है जिन पे हम बहस करते हैं, हम कहते हैं इमाम रहमतुल्लाह जो कुछ लिखा है असल में मसला यूं था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की एक और रिवायत सुनाते हैं फिर चलते हैं। आपने जो इसमें तहरीर फरमाया है ना, इतनी बड़ी शख्सियत के मुतल्लिक उन्होंने राय कायम कैसे कर ली थी, ये हो जाता है, ये भैया हो जाता है। आप ये कहें कि मासूम हो गए थे तो ऐसे नहीं होता। जिन पे इतना जुल्म हुआ था ना मुहद्दिसीन पे, खास तौर पे इमाम अहमद इब्न हंबल पे, इमाम बुखारी पे थोड़ा जुल्म हुआ था। आप नहीं जानते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के इंतकाल कैसे हुआ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को निकाल दिया गया था बुखारा से। शहर का जो गवर्नर था ना, उसने कहा आए और मेरे बच्चों को हदीस पढ़ा दें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ये ऐसा है कि इसके लिए खुद आना पड़ता है, ये इल्म चल के नहीं जाया करता। उसने कहा अगर तुम्हें इतना ही इल्म अजीज है ना, मेरे शहर से निकल जाओ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अगले दिन सामान बांधा और पुलिस आई और शहर बदर कर दिया। वो ये जमाना नहीं था कि शहर बदर करें तो कोई लोगों की इज्जत जिल्लत ही ना हो, गधे पे बिठा के निकाला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का सारा शहर देख रहा था, लेकिन हुक्मरानी थी ना, कानून नाफिज होता था ना, लोग डरते थे कि मार देगा आके। इसीलिए इन जालिमों की गिरफ्त अल्लाह ने वहां से की जाए, इन्हें गुमान भी नहीं था। सल्तनत ही उलट गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चले गए शहर छोड़ के और बड़े तंग थे। और उन्होंने कहा जाते हुए, उन्होंने कहा जाकत अलैहिल अर्ज बिमारा होगा, अल्लाह बुखारा की जमीन इतनी बड़ी होने के बावजूद बुखारी के लिए जगह नहीं रही, अल्लाह अपने पास बुला ले। बस इतना फरमाया, सोए, अगले दिन उठे, तहज्जुद पढ़ रहे थे, फिर फजर पड़ी तो तहज्जुद में भी यही कहते रहे कि अल्लाह बुखारा की जमीन तंग हो गई है मेरे लिए, एक मेरी ही जगह नहीं रही, बाकी शहर सारा आबाद है। फजर पढ़ के उठे और भाई से कहा कि भाई कफन लाओ। हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत गालिबन हुई और उन्होंने फरमाया कि तंग हो गए हो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल तंग हो गया। फरमाया अच्छा मेरे पास आ जाओ। तो जब आंख खुली तो छोटे भाई से कहा कफन ले आओ। भाई कफन ले आया, चूमा रखा और फरमाने लगे अच्छा भाई चलते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चल पड़े। ऐसे भी कोई मरता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाता है यूं ना तमूतून, जिस चीज पे जिंदगी गुजारते हो ना इसी पे मरोगे। कमा तमूतून ना का शरूल, जिस चीज पे मरोगे अल्लाह के सामने ऐसे ही पेश किए जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े लोगों को बुला लेते हैं। हज़रत उस्मान अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आखिरी दिन उठे, फजर पढ़ाई पढ़ी और बीवी नायला से कहा कि शलवार ला दो। उन्होंने कहा खैरियत है, आप तो हमेशा तहमत बांध के सोते हैं। उनका नहीं, शलवार ला दो। तो शलवार पहनी और तिलावत करने, बीवी ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, वो अबकर उमर रजी अल्लाह अन्हु भी साथ ही थे। तो मुझसे कहा उस्मान मेरी उम्मत ने बड़ा तंग कर दिया है। मैंने शिकायत की, मैंने कहा आपकी उम्मत ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा है, मैंने कहा जी। फरमाया अच्छा फिर इफ्तार मेरे साथ करना, हम तुम्हारा इंतजार जन्नत में करेंगे। तो फरमाया बीवी से कि मेरा ख्याल है मैं रोजे की हालत में ही शहीद हो जाऊंगा, तो जो लोग मुझे मारेंगे ऐसे ना हो कि मेरा सतर भी खुल जाए, तो मैं शलवार पहने हुआ तो नंगा तो नहीं ना हूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे भी कभी अल्लाह की तरफ से होता है बुला लेते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बुला ले, इमाम गजाली के साथ भी यही हुआ। गजाली की जब किताबें जलाई गई ना, अंदलस वालों ने जलाई थी, स्पेन वालों ने, गजाली की किताबें चौराहों में रख के जलाई गई और कहा गया कि गजाली की किताब किसके घर से निकल आई तो जेल सीधा। इमाम गजाली इतने दुखी हुए इससे कि वो उठे एक दिन और अपने दूसरे भाई से कहा कि भाई कफन लाओ। भाई ने कफन लाया। उस जमाने में हर कोई कफन घर पे रखता था, मौत का था ना डर। तो वो कफन देखा, चूमा और कहने लगे अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पे। बस ये कहा, नफल पड़े, कुछ भी लेटे और खत्म हो गए। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह में जो जुल्म हुआ था ना, इस वजह से वो हुकूमतों के खिलाफ थे और हुकूमतों के साथ जो लोग उस जमाने में इंसाफ के मुताबिक काम कर रहे थे, साहिरों को छोड़ तो नहीं सकते थे, तो दर पर्दा उनके भी खिलाफ हो गए थे मुहद्दिसीन। इमाम अहमद इब्न हंबल को दुर्रे पड़े, इमाम बुखारी का इंतकाल ऐसे हुआ, حاکم نشاپوری کا ہوا، امام مسلم پہ ظلم ہوا، امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی کے ہاتھ اتروا دیے تھے یہ کندھوں سے، امام مالک رحمت اللہ اپنی چادر نہیں اوڑھ سکتے تھے. 10 سال عبداللہ ابن مسعود جو گھر چھوڑ کے گئے تھے مدینہ منورہ میں، وہ خرید لیا تھا امام مالک کے دادا نے، اور ان کے چچا نے، اور یہ رہے ہیں پھر اس گھر میں. امام مالک رحمت اللہ علیہ پھر اسی گھر میں رہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں. پھر وہ گھر جو تھا مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا. 10 سال امام مالک رحمت اللہ علیہ نماز تو کیا جمعہ پڑھنے مسجد نبوی میں کبھی نہیں آئے، 10 سال تک نہ عید پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ نماز پڑھی مسجد نبوی میں، گھر پہ پڑھتے. تو کسی نے پوچھا امام مالک رحمت اللہ سے، تو انہوں نے کہا کہ عذر ضروری ہے، اظہار ضروری نہیں، بس. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو کچھ حکومت کر رہی ہے میں بولے بغیر رہ نہیں سکوں گا، وہ جانتے تھے. یاد رکھو، آدمی جب کمزور ہوتا ہے نا تو فرد سے دشمنی کی صورت میں انتقام لیتا ہے، ادارے سے نہیں ٹکراتا، پتا ہوتا ہے ادارہ مار دے گا. اور آدمی جب بہادر ہوتا ہے نا تو فرد کی دشمنی میں معاف کر دیتا ہے کہ یار چھوڑو، ادارے سے ٹکر لے لیتا ہے کہ ادارہ ہے تو کچھ کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے ادارہ بدلے گا تو ملک بدلے گا. کمزور آدمی فرد کو معاف نہیں کرتا، مار دوں گا، یہ کر دوں گا، ادارے سے نہیں ٹکر لیتا، پتا ہوتا ہے کہ ادارہ جو ہے نا اٹھا کر جیل ڈال دے گا. بہادر آدمی فرد کو معاف کہتا ہے چھوڑو یار، اللہ مالک ہے، کوئی بات نہیں، تم نے ظلم کیا اللہ معاف کر، تمہیں بھی مجھے بھی. ادارہ آتا ہے ٹکر لے لیتا ہے، کہتا ہے ادارہ بدلے گا تو ہم بدلیں گے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ ادارے سے ٹکر لینا، حکومت سے، حکومت کے مظالم دیکھ کے چپ رہنا، چپ رہ نہیں سکتے تھے، چپ کر کے گھر پہ رہتے تھے، نہیں جاتے تھے مسجد نبوی، نہیں جاتے. اس لیے محدثین پر بڑے ظلم ہوئے، محدثین کے پر جو ظلم ہوئے تو پھر وہاں سے فقہا، اور فقہا نے جب امپلیمنٹیشن میں سختی کی ہے تو اس سے تیسرے ادارے نے جنم لیا اور وہ ہے صوفی. جب مفتی نے کہا کہ یہ بات ایسے، یہ ایسے، صوفی نے کہا چھوڑو مفتی صاحب، گناہگاروں کو بھی جینے دو، تصوف اس سے جنم لیا.